आगे चलते हैं थोड़ा सा इस सूरत का पस मंजर। मैंने आपसे कहा था कि डेली कुछ ना कुछ देती रहूंगी। सूरत साहब छठे ग्रुप में, जहां मदनी दौर का आखिरी सेकंड हाफ था, अभी तक जो बताया है या यो लजी ना मनु ही है, कमज़ोर ईमान वालों को खिताब किया। कल का नुक्ता ये बता के आ गई थी आपको कि मज़बूत ईमान वालों को नहीं है, और ये भी कल बता दिया था आपको कि झुंझलाहट का अंदाज़ है, यानी डांट है, मा लकुम लिमा तकुलूना मा ला तफ़अलून। ठीक है, फिर इसी तरह से ये वो दौर था कि जिसमें ज्यूस और क्रिश्चियंस और मक्का के लोगों को डायरेक्ट कोई खिताब नहीं किया गया, इल्ला ये कि अलग से अलग कोई बात की हो। कुरान पाक में अगर आप इस सूरत को देखें मुसफ़ में, तो ये मुसब्बेहात में से, आज थोड़ी सी बात मुसब्बेहात पे करना चाहती हूँ ताकि आप ये सारी चीज़ें साथ साथ सीखते जाएं और आप इंशाल्लाह आगे से आगे चलेंगे। कुरान पाक की ये पांच सूरतें, इनके मजमुए को मुसब्बेहात कहते हैं। मीम सीन बा हा अलिफ और आगे ता, उनको जेर लगा दीजिए तो मुसब्बेहात। क्यों, वजह क्या? नंबर एक, इसका आगाज या तो सब्बाह से होता है या युसब्बिहु से होता है, और सब्बाह और युसब्बिहु दोनों का मतलब क्या है? तस्बीह की या तस्बीह करता है। यानी ये वो सूरतें हैं जिसमें तस्बीहात की बात है, और एग्जैक्टली आज के दौर में इनकी अहमियत क्यों है कि जिस दौर में हम सांस ले रहे हैं, उम्मते मुस्लिमा जवाल की इंतहाओं को छू रही है। मौलाना हाली के कुछ अशार, जिस दौर में ये सूरतें नाजिल हुई उसको और आज को आप रिलेट कर पाएंगे, कहते हैं कि पस्ती का कोई हद से गुजरना देखे, इस्लाम का गिरकर ना उभरना देखे, माने ना कभी कि मद है हर जजर के बाद, दरिया का हमारे जो उतरना देखे। यानी उन्होंने मुसलमानों के उस दौर जिसमें मौलाना हाली थे उसके बारे में ये किस्म का नौहा कहा था कि हम वो नहीं रहे जो हमारे असलाफ थे। आज मुसलमानों का हाल उससे भी कुछ पीछे है। आज नंबर एक, जज्बा ईमान ठंडा दिखता है, जोश जिहाद नापैद और जज्बा इन्फाक। लिखिए ये तीन कोने, एक ट्रायंगल बनाइए अपने नोट्स में, सबसे ऊपर लिखिए ऊपर की नोक पे जज्बा ईमान, राइट साइड पे लिखिए जोश जिहाद और लेफ्ट साइड पे लिखिए जज्बा इन्फाक। ये हैं वो तीन रॉ मटेरियल्स जिससे उम्मते मुस्लिमा उभरती है, जिसके बाद फिर इस्लाम को गलबा मिलता है, जो इस सूरत का मेन थीम है, लियुस्खिरहुल दीन कुल्लिही। तो मुसब्बेहात में से ये सूरत है। टोटल 10 सूरतें इस दौर में जो नाजिल हुई, जिनमें से पांच ये सूरतें हैं। आप कह सकते हैं कि एक गुलदस्ता है, एक फ्लावर पॉट है ये, जिसमें अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीजें रखी। हर सूरत का आगाज अल्लाह की तस्वीर से है। इन पांच में से तीन के आगाज में सब्बाह है और दो के आगाज में युसब्बिहु है। जमा कर लीजिए तो माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये तीन ही सीगे होते हैं ना, यानी अल्लाह की तस्बीहात होती थी, होती हैं और होती रहेंगी। ठीक है, अच्छा आप कहते हैं कि पांच सूरतें हैं तो तीन दफा सब्बाहा और दो दफा युसब्बिहु, तो फिक्र ना कीजिए, सूरत हशर की आखिरी आयत में भी युसब्बिहु है, तो फिर तीन दफा सब्बाहा और तीन दफा युसब्बिहु हो गया। ठीक है, वाह, ये सूरतें सब्बाह से क्यों शुरू होती हैं? यहां बल्कि वो एक सवाल भी जो आता है ना हमारे जहनों में कि पहली आयत में सब्बाह की बात का भी सारे मजमून से क्या ताल्लुक है जो आगे चल रहा है। तो लिखिए, फरिश्तों ने एक एतराज पेश किया था, या एक हिकमत मालूम करनी चाहिए थी कि व नाहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुकद्दिसुलक, कि अल्लाह हम तेरी तस्बीहात तो करते ही हैं, फिर तू आदम को क्यों पैदा कर रहा है? अल्लाह ताला ने इन पांच सूरतों के शुरू में, खास तौर पे सूरत सफ की बात, जिसका मेन थीम लियुस्खिरहुल दीन कुल्लिही है, गलबा इस्लाम, फकब्बिरहु तकबीरा, अल्लाह का नाम बड़ा करना, ये सब्बाह से शुरू करके बताया है कि पूरी कायनात तो तस्बीहात कर ही रही है, तारीफें तो अल्लाह की करती है। तो मुसलमानों, तुम सिर्फ ये तस्बीहात करके नहीं बचोगे, तुम्हें वर्क हार्ड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अल्लाह के नाम को बुलंद करने की अमली कोशिशें करनी पड़ेंगी। यानी सिर्फ तस्बीहें पढ़कर तुम नहीं बचोगे, चाहे वो 500 दानों की तस्बीह है, वो नमाज के बाद की तस्बीहात है, सुबह शाम की तस्बीहात है, या बीच में तस्बीहात है, तुम्हें अमली तस्बीह की ज़रूरत है। वो पांच चीज़ें याद आ रही हैं, वो सारी यानी खुलासा कर रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से इन तीन आयतों को जो अभी तक हम कर चुके हैं रिलेट करें। तो पहली आयत में सब्बह कहकर, युसब्बिहु कहकर अल्लाह ने कायनात का मुस्लिम होना सिखा दिया, लेकिन अगली आयतों में अब बराह रास्त ही बातें अखलाकी और दीन के काम के तकाज़ों की शुरू हो गईं। तो इससे क्या पता चला कि आज मुसलमान सिर्फ नमाज़ें पढ़कर नहीं बचेंगे, सिर्फ वज़ाइफ करके नहीं बचेंगे। आज का मुसलमान दुनिया में सिर्फ इल्मी बातें करके नहीं बचेगा, इसको अमली तस्वीह करनी पड़ेगी, हाली तस्वीह करनी पड़ेगी, अपने बयान से, अपने हाल से, अपने हुलिये से बताना पड़ेगा। और आज पूरी दुनिया शिरकी अमाजगा बनी हुई है, कायनात शिरक से मुबर्रा है। सूरज को ये पता, चांद को ये पता, सितारे को ये पता है, मुसलमान जब तक तू दुनिया से शिर्क ख़त्म नहीं करेगा तेरा मकसद तख्लीक पूरा नहीं होगा। आप ज़रा लीजिए, आज मुसलमान मुल्कों ही को देख लें बस, हम नॉन मुस्लिम मुल्कों की बात नहीं करते, हमें हक नहीं है, क्योंकि जिनका मुल्क उनका मज़हब, वहाँ चर्चिस हों होने दीजिए, सेनीगॉग्स हों होने दीजिए, वहाँ मंदिर हैं होने दीजिए, गुरुद्वारे हैं होने दीजिए। जैसे आप आज़ाद है मस्जिद बनाने में, इस तरह हर मज़हब आज़ाद है। ला इकराहा फिद दीन। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मुसलमान मुल्क को देख लीजिए, शिर्क के गढ़ हैं, शिर्क के अड्डे हैं। तो लिखिए ये सूरत, ये इसकी सिर्फ तीन आयतें, अभी उसका खुलासा करा के आपको चौथी पे लेके जाऊंगी। जब तक तुम अपनी ज़मीन को शिर्क से पाक नहीं करोगे, तुम अपने खलीफा होने का हक अदा नहीं करोगे। अल्लाह सुब्हान तआला मुसलमानों को सिर्फ तस्बीहां पढ़ने पे छोड़ देता तो फिर आप सारे जन्नत के अंदर जा चुके होते। आपके और मेरे और हमारी नस्लों के लिए ये पैगाम है। दुनिया में जहाँ आप पाकिस्तान से सुन रहे हैं इस वक्त, हमारे साथ एक कसीर तादाद इंडिया से सुन रही है इस वक्त माशाल्लाह, यूरोप वाले भी हैं और अमेरिका कनाडा के लोग भी हैं, और जो भी जिधर से इर्द गिर्द से सुन रहा है, आपको अपने इर्द गिर्द फैले हुए शिर्क को ख़त्म करना ये सूरत सब सिखा रही है, ये पैगाम है। और इसके लिए मोहब्बत, इसके लिए प्यार, और इसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर गौर करते जाएंगे, आपको यकीन आ जाएगा कि ये दुनिया में बीमारियाँ, ये जरासीम, ये वायरसेस वेकअप कॉल है। पहले दौर में सोते थे ना खुले आसमान के नीचे, तो तहज्जुद के वक्त मच्छर लड़ने शुरू हो जाते थे, इशारा होता था उठो ये मखलूक तुम्हें उठाने आई है। ये उस वक्त के अलार्म थे जो आप आज लगाते हैं ना, वो अलार्म आपको मच्छर आके उठाते थे कि उठो तहज्जुद पढ़ो। और अगर आपने वो छोटे से मच्छर को या उस अलार्म को नहीं सुना और तहज्जुद छोड़िए फजर भी गई, तो मक्खियाँ भेजता था अल्लाह, मक्खियाँ लड़ती थी, सूरज निकल आता था और आप अपना बिस्तर उठा के अंदर भागते थे कि मक्खियाँ आ गई हैं, वो आपको उठाते थे। वो अल्लाह की फौजें हैं, वलिल्लाहि जुनूदु समावाती वल अर्ध। अल्लाह सुब्हान तआला आपको मुझे वेकअप कॉल दे रहा है इन चीज़ों से। आज के दौर में तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया, पूरी दुनिया जरासीमों का शिकार है। वो रियल है, वो फेक है, वो नेचुरल है, वो सिंथेटिक है, वो लेबॉरेटरी टेस्टेड है, ये सबको छोड़ दीजिए, डजंट मैटर। लेकिन ये बात यकीनी है, कोई इसको, कोई फकीर, कोई पीर, कोई बुजुर्ग, कोई कब्र वाला, कोई बुत इसको दूर नहीं कर सका। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा हुआ था कि तारीख में ये बात लिखी जाएगी कि कोई पीर बाबा कोरोना को ख़त्म नहीं कर सका। दैट मीन जो करता है वो अल्लाह ही करता है। किसी ने कहा कि मज़ारों पे ताले पड़े हुए, जब मना किया गया बंद किया, तो कुछ दिन सिर्फ अल्लाह से ही मांग लीजिए। कितनी अच्छी बात है, कुछ दिन तक वो अवेलेबल नहीं है तो फिर अल्लाह से ले ले। तो जब कुछ दिन तक अल्लाह से सब कुछ मिल जाएगा ना, तो फिर उसके बाद उसी से मांगने की आदत डालिए। तो लिहाजा ये सूरत जिसमें हम झांक रहे हैं ना, ये नबी सल्लम के बेसत, आपकी बेसत नबी का बड़ा अहम रुख दिखाने वाली सूरत है कि आपने रियली इस दुनिया से कुफर को भी ख़त्म करना है, जुल्म को भी ख़त्म करना है, नाइंसाफी को ख़त्म करना है और बर्बरियत को ख़त्म करके पूरी दुनिया में इस्लाम को लाना है। मगर अफसोस की बात है, जिनको ये काम करना था वो तो खुद ही अभी उस लेवल के नहीं है। अभी तक कईयों को तो ये पता ही नहीं कि हो अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल खुदा व दीनिल हक की बात हमसे कही जा रही है। तो ज़रूरत इस बात की कि हम इस सूरत को जब पढ़ें तो बेहतरीन तरीके से पढ़ें। एक छोटी सी बात और लीजिए जो बहुत ही प्यारी है। कल आपको मैंने ज़ाहिर के आयत करा दी, लेकिन एक दफ़ा पूरी हो जाए फिर बाद में भी तो आप सोचते हैं ना जाके। एक सवाल है आपसे भी और आप मुझसे भी पूछने का हक रखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इन तीन आयतों में सब्बाहा की आयत के बाद आप देखिए अगर इसको, तो मक्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, आना क्या चाहिए था? गुस्सा। देखिए लिखिए, गज़ब क्या है लफ्ज़? अरबी का लफ्ज़ है ना। तो एक सवाल है कि अल्लाह ने आयत तीन में गजब की जगह मक्त क्यों कहा? कल मक्त को तो समझ लिया ना हमने, आज इसका फर्क समझिए और अल्लाह करे कि मैं ये समझा सकूं। मैं आपको इसके बारे में सिर्फ सोचना सिखा दूं कि अल्लाह का कलाम कितना पुख्ता है। आप देखिए कि अगर इस आयत को उर्दू में हम पढ़ते हैं कि कबूरा मक्तन इंद अल्लाह की जगह यहां ये लिखा होता अल्लाह को सख्त गुस्सा आ रहा है, अल्लाह गजबनाक है उन लोगों पे जो कहते कुछ है और करते कुछ है। क्योंकि जो हम ये कहते कुछ और करते कुछ को लेते हैं ना, तो हम दो चार चीजों पे डाल के छोड़ देते हैं। हाँ 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 फलाने ने ये कहा था लेकिन ये किया नहीं, फला नहीं। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा कहती कुछ है और करती कुछ है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहती है, तकाजे कोई नहीं है। कहती है अशहद उन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन अपने नबी की सुन्नतें सिर्फ नमाज रोजे में और झगड़े करने कराने के मामले में बोलती है और बाकी जिंदगी का उससे कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। चलिए लफ्ज लिखिए, गजब होता तो उसका मानी होता गुस्सा। और मक्त को आपके लिए आसान लफ्ज के ताकि आप इसको एब्जॉर्ब करें, वो है बेजारी। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अल्लाह को गुस्सा आता है उन लोगों पे जो कहते कुछ है और करते कुछ है और करते नहीं जो कहते हैं, बल्कि अल्लाह ने कहा कि अल्लाह बेजार है उन लोगों से। कि फर्क क्या है? लफ्ज गुस्सा, आपको गुस्सा किस पे आता है और आप बेजारगी किस से शो करते हैं? लिखिए, अगर कोई शख्स किसी वक्त आपकी तवक्कुआत पे पूरा ना उतरे तो उस पे आपको गुस्सा आता है। आप अपने बच्चे से कुछ कहती हैं, 5 बजे तक घर आ जाना, तुमने मुझे कहीं लेकर जाना, और वो नहीं आया, आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा ना। मियाँ साहब की बात कर ले जिस पे बात भी बनती है बेचारे पे, रियलिटी बात करो ना। मियाँ साहब को आपने कहा कि जी आप 5 बजे आइएगा ताकि हम जाएंगे और शॉपिंग करेंगे, वो आई नहीं, 5:15, 5:30, 6 बज गए, क्या हो रहा है? सिर्फ गुस्सा ही नहीं आ रहा, गैज भी आ रहा है। तो गैज व गजब आता है जब किसी से आपको तवक्कुआत हो और उस पर पूरा ना उतरे। लेकिन आज भी ऐसा हुआ, कल फिर ऐसा ही हुआ, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, बल्कि आप कहते हैं हर बार ही ऐसा होता है, तो उसके बाद क्या होगा? आपकी तवक्कुआत खत्म, ये नहीं आएंगे वक्त पे। और जब मैं कह दूंगी फिर तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो फिर बेजारगी शुरू हो जाती है। अब फर्क लिखिए, गुस्सा उस वक्त आता है जब किसी से तवक्कुआत हो और वो उस पर पूरा ना उतरे। लेकिन एक मरहला वो आता है जब तवक्को बिल्कुल खत्म हो जाती है और एक बेजारगी की कैफियत पैदा होती है। मक्त उस बेजारगी को कहते हैं, बेजार हूं मैं, छोड़ो मुझे तुमसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। गोया के मलामत का सबसे आला दर्जा है ये कि तुम जो मर्जी कह दो, ये तुम्हारी बातें, ये जो तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत के दावे हैं, आशिकाने रसूल हो, अल्लाह की नाम पे मरने को तैयार हो, काबे की एक गिलाफ का एक टुकड़ा लेने की ख्वाहिश में हो, सब बेकार है। लिमा तकुलू न माला तफलून। तुम्हारे दावे तो इतने बुलंद और अमल इतना नीचा, तुम तो किसी तरह उस म्यार पे पूरे नहीं उतरे। अल्लाह के साथ वफादारियां और रसूल की फरमा बरदारी कोई नहीं तुम्हारी जिंदगी में, और तुम्हारे दिल में अल्लाह और उसके दीन की हमियत नहीं है, गैरत नहीं है। तुम दीने हक को पामाल होता देखो और अपने काम धंधों में लगे रहो। इस्लाम का बच्चा रुल रहा है, लोग पाँव में डाल रहे हैं, वो किडनैप्ड है इस वक्त, वो रुला है, वो मغلوب है। तुम दुनिया के पैसे कमाने में मसरूफ हो, जाओ भाग जाओ। तुम्हारे कॉलो फेल का ये तजाद अल्लाह को इंतहाई नापसंद क्या, बल्कि अब अल्लाह तुमसे बेजार है। कबूरा मक्तन इंद अल्लाह अंतकुलू माला तफलू, है नहीं बेजारगी, दिलो चाट हो चुका है। ऐसे ही मान के कलमे पढ़ते हो और ऐसी ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीहां पढ़ते हो जब तक तुम अल्लाह के इस दीन के लिए जान और माल नहीं खपाओगे। और अगर तुम्हें वाकई मोहब्बत रसूल का दावा है और फिर तुम उनके मिशन के रास्ते के राही नहीं बन जाओगे, अपनी जान माल नहीं लगाओगे, उसके पहले कलमा ना दोबारा पढ़ना। देखिए ना, आपको गुस्सा आ जाता है ना उस बंदे पे जो आपसे प्यार की बातें बड़ी करे। आज भी आप देखिए कुछ लोग नातों में कितनी मोहब्बत की बात करते हैं। होता मैं सग मदीना का, ये एक शेर है, पूरी मैंने पोइम कहीं ना कहीं कई दफा पढ़ के सुनाई, जिसका खुलासा क्या है कि नबी की गलियों को सलाम, वहां की बोतलों को सलाम, वहां के ढक्कनों को सलाम, वहां के कचरे को सलाम, और सर पे उठा के रखूं पता नहीं और करूं 100 100 सलाम। और आखिरी शेर उसका है कि अल्लाह ने मुझे इंसान बनाकर डबो दिया, इससे बेहतर मदीने का कुत्ता होता। बातें तो तुम इतनी करते हो, और बेटी की शादी आ जाए और तुम्हारा अपना हाल हुलिया। लिमा तकुलू ना माला तफलो, डोंट स्पीक अबाउट दैट, शट अप स्कॉलर। दोबारा ना ये बात कहना तुम्हें कि हमें बड़ा प्यार है नबी से, और तुम्हारी जिंदगी अपनी घर की एक शादी आ जाए, तुम जिद्दोजहद छोड़ के किताल तक पहुंच जाते हो। कितनी लड़ाइयां होती हैं शादी के मौके पे घरों में, शौहर बीवी जितना लड़ते हैं, और बीवियां पैसे मांगती हैं और मर्द गरीब बेचारे जो है वो दे दे के थक टूट जाते हैं। इतनी लड़ाइयां तो तुमने अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए नहीं की। अल्लाह को ये पसंद ही नहीं ऐसे लोग, तो पीछे हो जाओ। फिर आप देखिए कि जितना ज्यादा आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करते जाएंगे ना, आपका दिल खिलता जाएगा। अब हम चलेंगे आगे, अगली आयत, जो कह लीजिए कि इस कोर्स की भी आयत है, नाम भी यही है। और ये है वो आयत जिसके बाद इंशाल्लाह हम मजीद समझेंगे कि इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीन युकातिलून फी सबीलिही सफ्फा कअन्नहुम बुनयानुन मरसूस। लफ्ज़ ब लफ्ज़ तफसीर है, पहली तीन आयतों का खुलासा हम कर चुके हैं। गजब की जगह मक्त क्यों आ गया ये भी देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं आयत नंबर 4 पे। अब ये मुझे नहीं पता ये हम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, इसलिए आज ये उम्मीद ना रखिएगा कि हम इसको पूरा कर लेंगे। जो अल्लाह ने आपके मेरे नसीब में लिखा लिखिए। आयत का टॉपिक या थीम क्या है? इज्तमाईयत की अहमियत और अल्लाह का महबूब कौन, इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिटी। बुनयानुम मरसूस बनना है, लफ्जी तर्जमा मेरे साथ दोहराइएगा। इन्न बेशक अल्लाह अल्लाह युहिब्बु वो मोहब्बत रखता है, अल्लज़ीना उन लोगों से, युकातिलूना जो जंग करते हैं, फी सबीलिही उसके रास्ते में, सफन सफ बनाकर, कअन्नहुम गोया के वो, बुनयानुम दीवार हैं, मरसूस सीसा पिलाई हुई। जी ऊपर जो देखिए आयत बा मुहावरा खोलिए, अब इसका मैं एक स्ट्रेच में पढ़ूंगी जो आप रोज ही देख रहे हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीन युकातिलून फी सबीलिही सफ़ा, बेशक अल्लाह को मोहब्बत है उन लोगों से जो उसके रास्ते में सफ बस्ता होकर लड़ाई करते हैं। यहाँ जिहाद नहीं है लफ्ज, फर्क हो जाएगा मानी, लड़ाई करते हैं। कान्नहुम बुनयानुम मरसूस, गोया के वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। आप इसका एक टाइटल लिखिए कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे डालते हैं जो कमंद। ये आयत क्या है? अब आगे पीछे होने की जरूरत नहीं, बस मैं बोलती हूँ और आप सुनिए। क्योंकि ये जो बात मैं करूँगी ना, ये तफसीरी खुलासा होता है। जब तक आप किसी आयत को उसके टेक्स्ट के एतबार से, उसके मेन अंदर के एसेंस को नहीं लेते ना, तो फिर बाकी बातों का फ़ायदा नहीं होता। और जब बाकी चीज़ें शुरू हो जाती हैं ना, तो फिर हम बाज़ दफ़ा पे टू मच हो जाता है हमारे लिए। इस आयत में अल्लाह ताला ने बंदे मोमिन को वो मंजिल दिखा दी है जिसको ज़िरवतुल इस्लाम कहते हैं। हम सब शुरू से लफ्ज़ जिहाद सुनते आए, हमें बचपन से जिहाद के लफ्ज़ के सब बस तलवार का पता था। थोड़े से बड़े हुए तो जिहाद बिन नफ्स आ गया, फिर जिहाद बिन सैफ आ गया, फिर थोड़ा आएंगे तो जिहाद ख्वाहिशों के साथ हो गया। तो जिहाद की बहुत सारी अकसाम है। आज सिर्फ दो लफ्ज़ आपकी साइज को समझने के लिए खोलूंगी, फिर आगे कहीं ज़रूरत पड़ी तो अगली आयतों में जाकर सारे ही बता दूंगी।